मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 9 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रितु सागर मध्य प्रदेश से, धीरज साहू पुणे महाराष्ट्र से, गुलाब चंद आपका गांव है पिंक पर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, संजय गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से, उपेंद्र गौतम इंदौर मध्य प्रदेश से, राहुल बिसेन बक्सर बिहार से और रुपेंद्र सिंह आपका गांव है ऐला जिला आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं विकास की सच्चाई इस पर कुछ बातें करूंगा। ये बहुत ही विश्लेषणात्मक किस्म का विषय है, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज आपने सुनी और उसमें आधार कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। कुछ और भी विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन सिविल सर्विस में हम खासकर उन विधेयकों को लेने की कोशिश करते हैं जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो छूट गए हैं उनमें नहीं पूछ उन पर नहीं पूछा जा सकता। लेकिन यहां मैं इस बात के लिए आपको सतर्क करना चाहूंगा कि सारे विधेयकों के अगर आप चक्कर में पड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे कि मैंने कल आपको बजट के डेटा के बारे में बताया था कि सारे डेटा के चक्कर में न पड़ करके आप केवल अपने लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर लें, बस उतना ही पर्याप्त है। तो हमारे लिए जो कल विधेयक पारित हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आधार कानून संशोधन विधेयक। और इसकी बहुत ही सरल सी एक बात है, उस विधेयक के डिटेल में जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, कि जो बैंक खाता अगर आप कहीं खोलने जाते हैं या कहीं फोन का कनेक्शन लेने जाते हैं तो उसके लिए अब आपको आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। वो आपकी अपनी इच्छा पर है, अगर आप चाहें तो दें, नहीं चाहें तो आप अपना दूसरा परिचय दे सकते हैं। तो आधार की अनिवार्यता इस संशोधन के माध्यम से बैंक खाते और फोन कनेक्शन के लिए समाप्त कर दी गई है, बस इतनी जानकारी पर्याप्त है। एक न्यूज आपने जम्मू कश्मीर के बारे में सुनी, आज अखबारों में भी है कि जम्मू कश्मीर के बारे में मानव अधिकार आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसका उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का हनन हो रहा है। दोस्तों ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसके बारे में एक बात कही जाती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हाथ में या डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनके हाथ में थमा दिया गया एक कोड़ा है। इस मायने में कोड़ा है कि जहां भी उनको जरूरत होती है वो मानव अधिकार के उल्लंघन की बात कह देते हैं यह जाने बिना कि सच्चाई क्या है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में इतने जबरदस्त किस्म की आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वहां के जो लोग हैं मारे जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में वहां जो भी हमारी सुरक्षा बल सैन्य बल तैनात है वो कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया करेगी। तो इस प्रतिक्रिया को फिर वो इस रूप में लेते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ये जो मानव अधिकार आयोग जैसे हैं इन पर यह आरोप लगाया भी जाता है। और खासकर जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि वो हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के मामले में भी यही हुआ है और भारत ने इसका विरोध किया है, है ना। तो ये थोड़ा सा एक एंगल है कि मानव अधिकार आयोग की समीक्षा के तहत आप इस बात का ध्यान रखें कि भले ही ये बहुत ही एक अच्छा संस्थान है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बेसिकली विकासशील और गरीब देशों के विरोध में दिखाई देती है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि डाटा संरक्षण कानून विधेयक संसद में रखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होगा। क्योंकि न्यूज में इसका उल्लेख था तो मैंने सोचा कि आपको अभी से सतर्क कर दूं कि जैसे ही डाटा संरक्षण कानून विधेयक संसद में आए तो इस पर फिर बहस होगी, अखबारों में भी चीजें आएंगी, फिर ये पारित होगा, तो इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक बात मुझे आप सबसे और कहनी है जो बजट को लेकर है। कल मैंने बजट के बारे में कुछ आप लोगों से बातें की थी, उसमें एक बात बतानी रह गई थी समय को देखते हुए। ये बहुत ही मैं आपको सामान्य बात बता रहा हूं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसका संबंध 2019 के बजट से है, लेकिन इनफैक्ट ऑलमोस्ट आगे आने वाले 1-2 साल के बजट से भी होगा। और आपको इससे इस बात का अंदाजा लगेगा कि सरकार की जो कमाई होती है कहां कहां से कितनी कमाई होती है, बड़ी कमाई, और सरकार फिर अपने उस कमाए हुए धन को जो खर्च करती है वो कहां कहां चला जाता है, बड़े खर्चे। तो जो बजट है आपको मालूम ही है, बही खाता अब नाम दे दिया गया है, यानी कि कितना कमाया और कितना खर्च किया, बस यही बही खाता है और यही बजट भी है। तो देखिए, भारत सरकार के पास जो धन आता है, यदि हम उसको 100 रुपए मान लें, ठीक है, तो 100 रुपए का मतलब प्रतिशत हो गया। अब जितने रुपए खर्चे की मैं बात करूंगा, आप उतना प्रतिशत उसके आगे लगा दीजिएगा। तो उसमें से देखिए कि जो 21 रुपीज है, 21 रुपए, 100 रुपए में से 21 रुपए, यानी 21% निगम कर से आता है, कारपोरेट टैक्स से आता है। आपको मालूम है कि इस बार सरकार ने कारपोरेट टैक्स के बारे में व्यवस्थाएं की हैं बजट में, लेकिन मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं। 21 पैसे कारपोरेट टैक्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लाभ से देती हैं। इसके बाद जो 19 पैसा आता है, 19%, वो आता है जीएसटी से। तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि जो रियल टैक्स कलेक्शन है, आप कह लीजिए उस तरीके से, जो पब्लिक से आ रहा है वो जीएसटी के माध्यम से आ रहा है। इसके बाद है इनकम टैक्स, इसका तीसरा स्थान है। 16% जो सरकार के पास धन आता है वो इनकम टैक्स से आता है, 16%। तो अब आप देखिए कि अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग 56-60% जो कमाई सरकार की हो रही है केवल इन तीन टैक्सों से हो रही है, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, राइट। इसीलिए देखिए, जब इनकम टैक्स घटाने की बात होती है तो सरकार को डर लगने लगता है, उसकी दर घटाने की बात होगी, स्लैब बढ़ाने की बात होगी, तो सरकार को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी कमाई कम न हो जाए, जबकि सरकार पर लगातार ये दबाव पड़ रहा है। अर्थशास्त्री विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि आप टैक्सेस की दर को कम कर दीजिए, देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे तो आपका टोटल कलेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि रुपए सरकार खर्च कहां कहां करती है, कितना कितना करती है। मैं मोटे तौर पर आपको बताऊंगा कि जो 23% टोटल का, यानी कि 100 रुपए का 23 रुपए सरकार जो है वो राज्यों को दे देती है, क्योंकि राज्यों का भी हिस्सा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। आपको मालूम है कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो इसी बात का तो निर्धारण करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे टैक्स केंद्र कलेक्ट करती है लेकिन वो राज्यों में होते, जैसे मैंने अभी इनकम टैक्स की बात की या कॉरपोरेट टैक्स की बात कही या जीएसटी की बात कही, तो ये एक्टिविटीज तो राज्यों में ही हो रही है ना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका कलेक्शन कर रही है, तो उसमें से वो 23% राज्यों को दे देती है। फिर जो हमारा बहुत बड़ा अंश है 18%, 18 रुपीज, वो सच पूछे तो कर्ज की अदायगी में चला, उसके ब्याज के में चला जाता है। हम दुनिया भर के वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेते हैं, कुछ देशों से कर्ज लेते हैं, तो उनके ब्याज में ही हमारा 18% चला जाता है। और फिर 13% जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से, जो सरकार योजनाएं बनाती है, तो मेजर तो देखिए यही है। और 9% जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में होता है, जो राज्यों के माध्यम से लागू होता है और जिसमें राज्य भी अपनी अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं। तो मित्रों, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, खासकर बजट के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी। आज मैं आपको दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसमें से एक है नितिन देसाई का बिजनेस स्टैंडर्ड का, उसमें आप इसका जो चौथा पैरा है उसे आप खास कर ध्यान से पढ़िएगा। केवल मैं चौथे पैरे की बात कह रहा हूं, उस पूरे पैरे को आप ध्यान से पढ़िएगा। हो सका तो मैं कल इसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा, आज चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, इसी तरह से मैं एक आर्टिकल, यह भी बिजनेस स्टैंडर्ड का है, प्रोवाइड कर रहा हूं, ये शून्य लागत खेती पर, जिसे मैंने जीरो बजट फार्मिंग कहा था। कल इसके बारे में मैंने आप बताया था, और आज देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसकी बहुत ही डिटेल दी है, इस पर आपको नोट्स बना लेने चाहिए, राइट। संभव हुआ तो मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन ये आर्टिकल इस तरीके से लिखा गया है कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी भी तरह के निर्देशन की, मार्गदर्शन की आपको जरूरत होगी। दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय पर आ रहा हूं, और मेरे इस मुख्य विषय का आधार है दैनिक भास्कर का आज एडिटोरियल कमेंट। बहुत खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है और बहुत छोटा है। अब देखिए कि कैसे छोटे में ताकत होती है। आपको भी 200-150-250 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उसे लिखेंगे कैसे, उसकी ताकत आएगी कैसे, कैसे आप, जिसे कहा जाता है कि गागर में सागर भर देंगे, एक छोटे से घड़े में ही आप समुद्र भर देंगे, ये एक कला होती है जो आपको सिविल सर्विस मेंस में नंबर लाने के लिए सीखनी ही होगी। इस दृष्टि से भी आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़िएगा। दोस्तों इसमें एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई, 29 साल का उल्लेख किया गया है, 29 ईयर्स। आप मान लीजिए उदारीकरण से पहले, जैसे जब से उदारीकरण शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक, तो जब उदारीकरण शुरू हुआ तो उस समय एक उन्होंने डेटा दिया है कि जीडीपी के मामले में, सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया में हमारा स्थान 35वां था, यानी कि हम जीडीपी के मामले में बहुत नीचे थे। अब हम जीडीपी के मामले में ऊपर उठ करके छठवें स्थान पर आ गए, 35वें से छठवें स्थान पर आ गए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी पांचवें पर पहुंच जाएं, कोशिश चल रही है ना। अब आप देखिए कि इससे सिद्ध हो रहा है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बहुत बढ़ा। लेकिन यहां जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये कहा कि लेकिन जब हम मानव विकास सूचकांक को देखते हैं तो 29 साल पहले हम 135वें स्थान पर थे और आज हम 130वें स्थान पर ही हैं। मतलब मानव विकास सूचकांक के मामले में हमारी तरक्की नहीं हुई, जबकि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में हमने इतनी उछाल मारी है। सोचिए कि 35वें स्थान से हम छठवें स्थान पर आ गए, लेकिन वहां 135वें से 130 पर ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने कमाया तो खूब, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उसका फायदा जो लोगों को मिलना चाहिए था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती, हमारा स्वास्थ्य, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर होती, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो मानव विकास सूचकांक में हम इतने पीछे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे उन्होंने जो रीजन दिया है, जो बहुत ही सही रीजन है, वो ये है कि देखिए जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा खुद के शुरू की गई योजनाएं हो, वो लागू तो राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भ्रष्टाचार नो डाउट कि केंद्र में तो लगभग लगभग समाप्त सा ही दिखाई देता है, लेकिन राज्यों में भ्रष्टाचार अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो जहां भ्रष्टाचार होगा तो वहां जो सर्विस डिलीवरी होती, यानी कि जो योजनाएं लागू की जानी हैं, वो जनता तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं पा रही है। इसमें फिर से उन्होंने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया था कि फसल बीमा योजना 2 साल से लगातार घटती चली गई है। आज केवल 17% लोगों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जबकि यह है कि 3 सालों में इसे 50% करना था। तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसका उन्होंने जो रीजन दिया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उसके कारण जो सरकार योजनाएं बना रही हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। ये तो पहला कारण है। दूसरा, हमने जो अपनी इकोनॉमी का मॉडल चुना हुआ है वो मॉडल कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारी पूरी संपदा, जो सकल घरेलू उत्पाद से जो हम जनरेट कर रहे हैं पूंजी, कुछ लोगों के हाथ में वो केंद्रित होती चली जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक केक का 3/4 हिस्सा, लगभग कह लीजिए या 60% हिस्सा 1% लोगों तक चला जाता है, और यहां जो थोड़ा सा 35-40% जो हिस्सा बच गया है वो रिमेनिंग 90-95% लोगों तक बट रहा है। तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? सीधी सी बात है कि यही है हमारे विकास का सच, जिसमें बहुत थोड़े से लोगों का विकास हो रहा है, बाकी हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वो ज्यों की त्यों लगभग उसी तरह का जीवन जी रही है। तो दोस्तों, समीक्षा करने के लिए इसमें बहुत सुंदर आंकड़े दिए गए हैं, और इसे आप एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस का एक मॉडल भी समझ सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दो दोस्तों के नाम है, निहारिका यादव और संजीव कुमार झा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।